आज हम वो आयत सीखने जा रहे हैं जो कुरान करीम की सबसे तवील आयत है, सबसे लॉन्ग लेंथी है। मैंने आपको पहले एक दफा बताया था कि बाज लोग आयत अल कुर्सी को समझते हैं कि वो सबसे लंबी आयत है, हालांकि वो सबसे लंबी आयत नहीं, वो सबसे अजीम आयत है कुरान करीम की। सबसे लंबी जो आयत है कुरान पाक की वो है ये आयत, आयत नंबर 282, जिसको कहते हैं आयत दईन। दईन जैसे अभी हमने पढ़ा, बी दईन इन इला अजल मुसम्मा, कर्ज, कर्ज के बारे में आयत जो है वो कुरान करीम की सबसे तवील आयत है। अच्छा, बाज लोगों को शायद ये हो कि हम ये आयत क्यों सीखें, हमने तो ना कर्जा देना ना कर्जा लेना ना कुछ है। तो बात ये है कि जो अहकामात, जो बातें भी कुरान करीम में आई हैं, उनको सीखना, उनको समझना, इसके ऊपर हमारे लिए अजर भी है और दुनिया और आखिरत का फायदा भी, अल्लाह की रजा भी है। आप इसको इस तरह से देखें, बाज दफा हमारे पास यहाँ पे कॉल्स आती हैं या मेल में लेटर आते हैं कि आप आइए हमारे पास और ये प्रेजेंटेशन आप देखें, 4 घंटे की या 5 घंटे की है, आप अगर ये प्रेजेंटेशन हमारी देखेंगे तो हम उसके बाद आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, हम आपको फलां फलां जगह के टिकट भी देंगे और ये भी देंगे वो भी देंगे, आपका हमें सिर्फ वक्त चाहिए, आप आए और ये बस हमारी ये जो भी उनको अपने इश्तेहार होता है उनके प्रोडक्ट या जो भी चीज बेचना चाहते हैं। तो हम इस लालच में दूर दूर के सफर भी करते हैं और जाके अपना वक्त लगाते हैं, कोई वीकेंड पे जाके बैठता है कि चलो टिकट मिल जाएगा मुफ्त का। बाज लोगों ने शायद इस चीज को अवेल भी किया हो कभी। आप ये देखें, हालांकि चाहे आपने वो चीज नहीं लेनी होती, इनकी लालच में जाते हैं उसके रिवॉर्ड के। ये तो कुरान करीम है, कोई भी इस वजह से किसी आयत को गैर अहम समझ के, या हमने तो इसके ऊपर कौन सा अमल करना है, या हमने तो इसकी जरूरत कभी हमें महसूस नहीं होगी जिंदगी में, तो हम क्यों इसको सीखें, ये सोच के कोई भी इसको ना छोड़े। क्योंकि आप नहीं जानते कि इसके एक एक लफ्ज पे, इसके एक एक हर्फ पे आपको क्या अजर मिलने वाला है। ये तो आपको एक टिकट देने का लालच करते हैं ना और आप दौड़े चले जाते हैं। यहाँ पे एक एक हर्फ पे आपको क्या मिल रहा है, ये अंदाजा आप आज नहीं लगा सकते, ये कयामत के दिन पता चलेगा कि आपका एक एक मिनट जो आपने यहाँ स्पेंड किया ना, वो आपको कितनी बड़ी सहादतें और कितने दर्जात वहां पे दे देता है। फिर तो इंसान सोचेगा काश कोई जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा ना गुजरता जिसमें मैं अल्लाह के जिक्र के बगैर रहे। तो पहले तो ये बात अच्छी तरह से आप लोग जान लें। दूसरी बात ये कि इतने दिनों से हम आशर्ती अहकाम पढ़ रहे हैं, कभी तलाक के बारे में, कभी निकाह के बारे में, कभी इद्दत के, कभी दूध पिलाने के, कभी सदका करने के, कभी रिबा के बारे में। ये तमाम वो मामलात हैं जिनको हम टोटली दुनियावी मामलात समझते हैं, क्योंकि ये हमारे इंसानों के साथ मामलात हैं ना, ताल्लुकात हैं। इनमें कोई भी ये एलिमेंट नहीं है कि अल्लाह ताला के साथ हमारा कोई मामला हो, क्योंकि हम तो वो मामलात समझते हैं दीन के जिनमें जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, जैसे हज है, ये चीजों को समझते हैं। लेकिन ये जो काम है ना सारे, शादी हो गई या किसी को दूध पिलाना है या किसी को कर्ज देना है, तो हम कहते हैं इनका दीन से क्या ताल्लुक। दीन को चूंकि हम बहुत ही एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम में देखते हैं, हम उसको सिर्फ नमाज, रोजा और इन रिचुअल्स तक समझते हैं, ये बस 2-4 चीजें, ये दीन है। कैसे किसी से ताल्लुक जोड़ा जाए, किसी मर्द का औरत के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे जुदाई होगी, कैसे कर्ज लिया जाएगा, कहाँ पे सदका देना है, ये तो हमारी अपनी मर्जी है, इसमें हम जो मर्जी करें। इसमें नाउज़ुबिल्ला इस्लाम को क्या पता, ये मॉडर्न एज है, ये बातें तो हमारे अपने इकोनॉमिस्ट हमें बता सकते हैं। तो ये मामलात ऐसे हैं कि इनमें हम खुद समझते हैं अपने आप को कि हम अकले कुल हैं, हमें पता है हम जैसे इनको हैंडल कर सकते हैं ना, कोई और इस्लाम थोड़ी हमें बता सकता है। इस्लाम बस मुसल्ले पे है, मस्जिद में, इस्लाम यहीं तक है, बाकी हमारी दुनियावी जिंदगी में इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। क्या आज तक हम अभी तक जितना भी पढ़ चुके तो क्या ये नहीं पता चलता कि इस्लाम आपके कारोबारों में भी है, बाजारों में भी आएगा, आपके किचन में भी आएगा जहां पे हलाल और हराम की बात हमने पढ़ी, आपके ड्राइंग रूम में भी आएगा और आपके बेडरूम्स में भी आएगा। तब है ये मुकम्मल इस्लाम। उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, अल्लाह ताला ने फरमाया इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, हर जगह इस्लाम नजर आना चाहिए। ये नहीं है कि मस्जिद जाते हुए तो मैं इस्लाम की तस्वीर नजर आऊं और बाकी जगहों पे इस्लाम को ही भूल जाऊं, बाजार में जाऊं तो इस्लाम क्या है, मुझे इससे क्या, जो ट्रांजेक्शन हो रही है मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें इस्लाम का क्या ताल्लुक, मेरे जो बेडरूम के ताल्लुक आते हैं उसमें इस्लाम का क्या ताल्लुक। नहीं, ये सब इस्लाम के दायरे में आएंगे तो तब आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल, अदरवाइज आपने तो पिक एंड चूज किया ना। वो जो पहले बात आई थी सूरह बकरा में ही हम पढ़ चुके हैं पहले पारे में, अफतुमीनूना बिबादिल किताबी, क्या तुम ईमान रखते हो बाज हिस्से पे किताब के, है? सिर्फ बाज हिस्से पे ईमान रखते हो, सिर्फ कुछ हिस्से पे, और बाज का इनकार कर देते, बाज को मानते ही नहीं कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है। तो हम इस्लाम को लिमिट नहीं कर सकते कि एक कोने में इस्लाम को बिठाया हुआ और बाकी हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। महंगे नहीं, इससे अंदाजा कीजिए कि सबसे लंबी आयत जो है ये किस बारे में, ना नमाज के बारे में, ना रोजे के बारे में, ना जकात के बारे में, ये कर्ज लेने देने के बारे में। क्योंकि कर्ज का मामला ऐसा मामला है, ऐसे तो और भी चीजों के अंदर लोगों में ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, लेकिन माशरे में ना अगर लोगों ने अमन और सुकून से रहना, अगर आप चाहते हैं इज्जत और एहतराम की फिजा कायम रहे और लोगों में कम से कम झगड़े फसाद, तो इस असूल को जो अल्लाह ताला ने ये कर्ज के बारे में दिए, इन असूलों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम बात पढ़ चुके हैं सदका और खैरात, फिर हमने बात की कि रिबा नहीं लेना, सूद नहीं लेना, सूद के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होगी, सूद पे कर्ज नहीं दिया जाएगा, तो फिर कर्ज कैसे दिया लिया जाएगा, कर्ज के क्या असूल होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने यहां बताया है। यानी ये जब तुम कर्ज ले रहे हो लिखोगे कैसे, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, गवाह कैसे होंगे, कौन लिखेगा, कौन गवाही देगा, ये सब चीजें इसमें कवर होंगी। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतना मेहरबान कि उनको उनके माली मामलात में भी, फाइनेंशियल मैटर्स में भी गाइड करता है, उनको भी सही निभाने की तालीम देता है ताकि इंसान नुकसान से बच जाए, ताकि सोसाइटी में पीस हो। आज दुनिया ने तो इतनी रिसर्च कर करके ये कवानीन बनाए हैं, हमें तो 1400 ईयर्स पहले ये बता दिया क्या है। तो अल्लाह ताला को हमारी भलाई की कितनी फिक्र है, और इस चीज की कि किसी के ऊपर कोई जुल्म और ज्यादती ना हो और लोग आपस में अमन और सुकून के साथ रहें। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस आयत को देखते हैं और पार्ट्स में देखेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए, अगेन ईमान की बात करके मुसलमानों को कॉल दी गई, उनको बता दिया गया कि तुम्हारा रंग तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी नस्ल तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारे इलाके तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी कौमियत बरादरियां ये पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान अल्लाह के नजदीक ईमान है। इसीलिए बार बार ईमान का नाम लेके, ईमान का लफ्ज ला के कोई हुक्म दिया जाता है। ईमान वाले कह के पुकारा जाता तुम, ओ फलां इलाके वाले, ओ अरबो, ओ अजमो, ये नहीं कहा जाता। और यहाँ पे खास तौर पे जहन में रखने की ये बात है कि ए ईमान वालो, तुम तो ईमान ला चुके हो ना, तो तुम अपने फाइनेंशियल मैटर्स में भी अपने रब की दी हुई गाइडेंस को एक्सेप्ट करो। अपनी अकल पे चलोगे तो ठोकर खाओगे। तुम तो एक्सेप्ट कर चुकी हो ना, ईमान एक्सेप्ट कर चुकी हो, इस्लाम ला चुके हो ना, तुम तो कहते हो तुम्हारा रब पे ईमान, तो फिर जैसे उसने कहा वैसे चलो। ये क्या करो, इदा तदायन तुम, जब तुम आपस में लेन देन करो। किस चीज का लेन देन? बिदईन, दईन का, कर्ज का। दईन क्या होता है? दो लोगों के दरमियान जब उधार का मामला होता है ना, लोन लिया जाता है, और वो भी इला अजल मुसम्मा तक, एक मुकर्रर मुद्दत तक, तो उसको दईन कहते हैं। एक तो हम कर्ज कहते हैं ना, कर्जा ले लिया। कर्ज दईन कब कहलाता है? जब इसके अंदर एक फिक्स टाइम होता है, टाइम फिक्स कर दिया जाता है ना कि इस वक्त मैं वापस करूंगा। तो अब क्या होगा, जब भी तुम लेन देन का, कर्ज का मामला करोगे, वो वाला कर्ज जिसमें एक वक्त मुकर्रर है, एक स्पेसिफिक डेट है, तो क्या करो? पहला हुक्म क्या आया? फक्तुहु, लिख लिया करो वो उसको। आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है। और कर्ज भी फिर ऐसे नहीं हो के बस ऐसे ही है कि किसी वक्त तक, अच्छा जब नेक्स्ट ईयर समर में, नहीं, इला अजल मुसम्मा तक होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक डेट लिखनी चाहिए। समर तो फिर पूरा समर ही हो गया, स्प्रिंग कह दिया, अगला साल कह दिया, तो अगले साल में कब? इसीलिए ये लफ्ज आया अजल मुसम्मा का, कि मुकर्रर वक्त। तो ये ऐसे ही बात नहीं, ओपन में नहीं छोड़ देनी चाहिए। तो या तो आप इसको पहला हुक्म कह सकते हैं कि जो भी कर्ज लो वो अजल मुसम्मा तक हो, और फक्तुबू उसको लिखो। देखिए ये कलम, कलम जो है ना, ये जो पेन है, जो लिखने का जो भी चीजें इस्तेमाल होती है, कलम, अल्लाह ताला ने कलम की कसम भी खाई है, तो कलम से बड़े बड़े प्रॉब्लम से इंसान बच जाता है। जैसे अभी भी आप कलम से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? ताकि भूले नहीं। और कर्ज का मामला तो ऐसा है कि जिसमें ये लिखने की बहुत ही जरूरत होती है, इसलिए कि इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है। वल यक्तुब, और चाहिए के लिखे। कौन लिखेगा? अब यहाँ पे ये बताया जाए, अब ये किताबत के बारे में ना सारी बात आएगी यहाँ तक आगे। बिल अदल है ना, फल युम ली फल युम लिल वलीहु बिल अदल, यहाँ तक किताबत की बात आ रही है। ये फक्तुबू जो है ना, ताकि आप लॉस्ट नहीं हो जाए ना पूरी आयत में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ब्रैकेट लगा लें, वल यक्तुब से बिल अदल तक। अब ये डिस्क्रिप्शन है सारी लिखने की, लिखा कैसे जाएगा, कौन लिखेगा, किसी का कोई खुद नहीं लिखवा सकता तो फिर उसके लिए कौन लिखेगा, वो सारी बातें। लिखने में क्या चीज को जहन में रखना चाहिए, ये बिल अदल तक फक्तुबुहु की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आएगी। फिर आगे एक और हुक्म है कि किस तरह और भी क्या किताबत के अलावा क्या किया जाए, तो फिर हम उसको बाद में देखेंगे। पहले हम जब किताबत की जाएगी, जब लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और चाहिए के लिखे तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला। कातिबुन है ना, तो कोई भी लिखने वाला हो सकता है। उस जमाने में तो क्योंकि बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते, लिखने वाला बहुत मिलना भी एक मुश्किल बात होती ना, ज्यादा लोग तो उम्मीद थे। मगर आज के दौर में बाकायदा वसीका नबीस होते हैं, वसीका नबीस उनको कहते हैं जो लिखते हैं। वो आपने देखा होगा दांतों के बाहर भी कई लोग बैठे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं, कोई दरखास्त लिखानी हो किसी ने, तो उनको सारी चीज पता होती है किस तरह से इसको लिखना। इसी तरह यहाँ पे इन मुल्कों में वकील होता है, आपने देखा ना वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जब कोई लोन लेना होता है या कुछ, तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, और हमें उतने कानूनी नुक्ते नहीं पता होते जिस तरह से वो लिख रहा होता है, जिस तरह से वो एक एक चीज की माइन्यूट डिटेल्स में जाके तो उसको लिखता है, फिर हम बस साइन कर देते हैं। तो वही वाली बात है यहाँ पे, वल यक तो बैना को तुम्हारे दरमियान लिख ले, जो भी कर्ज का मामला है ना तुम्हारे दरमियान हो रहा है, किसके दरमियान, तुम्हारे कौन, बैना कुम कौन तुम्हारे, यानी कर्ज लेने वाले और देने वाले के दरमियान जो भी मामला तय हो रहा है वो लिख ले, एक लिखने वाला किस तरह लिखे, बिल अदल, अदल के साथ। क्या मतलब अदल के साथ, यानी जो भी मामला तय पा रहा है, अब हो सकता है कि कर्ज लेने वाला या देने वाला उनमें से कोई पढ़ा लिखा ना हो, ना जानता हो, उसको कानूनी नुक्ते इतने पता ही ना हो। अब जैसे हमारे जैसे लोग ले पर्सन को क्या पता, तो अब उसको तो पता है ना वो किस तरह से लिखे, ठीक ठीक बात लिखे, ऐसी बातें ना लिखे जो अनक्लियर हो, जिसमें डबल मीनिंग्स निकल रहे हैं, जिसमें कोई आगे मसले पैदा हो जाए, हर बात को ठीक ठीक क्लियर लिखे। और अगर कोई अनपढ़ है तो उसको तो नहीं पता कि क्या लिखा जा रहा है, तो कातिब को अदल के साथ ही लिखना, चाहे वो उसको नहीं भी समझ आ रही लेकिन ये सही सही बात लिखे, ये कातिब की जिम्मेदारी है, उसको अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शन दिया। और आज तो इसके ऊपर आपको पता है कि पैसे भी लिए जाते हैं, जाहिर है ये एक प्रोफेशन बन गया ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनको जो लॉज में जो बारीक बातें होती हैं वो उनको समझ आती हैं, तो हमें नहीं आती तो हम हायर कर लेते हैं किसी, तो उसमें फिर लिख दिया जाता है भाई ये कंडीशंस हैं, जब वापस किया जाएगा तो ये होगा और इस डेट को होगा और ऐसे होगा, वो तो सब चीजें, ठीक है, ताकि वापसी के वक्त झगड़े ना पड़े। जैसे हमने पहले बात की थी, बहुत सारी आप खबरें इस तरह की सुनते भी होंगे कि किसी ने कर्ज किसी से लिया, उसके बाद वापस नहीं लिया, उसके बाद फिर झगड़ा पैदा हुआ और फिर वो उसके पीछे पड़ गया, फिर उसके बाद नौबत, यानी इन शॉर्ट ये है, होता है कि कभी कभी कत्ल भी लोग कर देते हैं इस वजह से। अगर कत्ल तक नहीं भी नौबत आती, दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, इसने हमारे इतने पैसे खा लिए, हमने उसको फलां टाइम पे दिए थे, उसने कभी वापस नहीं किए, अब तो वो हमारी कॉल्स भी नहीं उठाता, अब तो वो मिलता भी नहीं, तो इस तरह की शिकायत हो जाती है, फिर गीबतें होती हैं, फिर आपस के अंदर ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, एक मुंह छुपाता फिरता है, फिर इंसान उसमें झूठ भी बोलता है, अच्छा फलां वक्त में दे दूंगा, फलां में दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तरसों दे दूंगा, और दूसरा जो है ना उसके घर के चक्कर लगा लगा के, और फिर वो ख्वार होता है खुद भी, तो इससे इतने ताल्लुकात खराब होते हैं। देखें शुरू में तो लोग अक्सर ये कहते हैं आओ क्यों लिखा जाए, हम क्यों लिखें, हमें भला एतबार नहीं है, और खास तौर पे जो ले रहा होता है ना, देने वाला तो शायद चाहे भी कि लिख लिया जाए, जो लेने वाला होता है वो क्या कहते हैं, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं, एतबार नहीं, मैं लेके भाग जाऊंगी तुम्हारे पैसे, जो लिखाने बैठ गए। वो भरोसे और एतबार की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया लिखो, अब जहां पे बैंक है या जहां पे और चीजें वहां पे तो लिखा जाता ही है, लेकिन जब दो लोगों के दरमियान ट्रांजेक्शन होती है तो वहां पे लिखा नहीं जाता। फिर आपने मसलन अपनी बहन को कोई कर्जा दिया, भाई को दिया, उसने कहा भाई फलां डेट को फलां वक्त में मैं लौटाऊंगा, उसके बाद आपने लिखा ही नहीं, लिखा इसलिए नहीं कि वो भरोसे की बात है जी, वो अल्लाह ताला ने इस बात पे इतनी तवील आयत, कुरान पाक की तवील तरीन आयत उतार दी, और हम इस चीज को कुछ समझते नहीं। उसके बाद हम जब नुकसान उठाते हैं, जब शुरू में पहले ये होता है कि हाँ नहीं भाई है, एतबार है, बहन है, एतबार है, उसके बाद वही बहन बहन में ऐसी दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं कि हद से ज्यादा, इसी तरह जैसे आप बाज दफा ये होता है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने पाकिस्तान में किसी को कर्ज दिया, अब क्या है कर्ज, आपने यहाँ पे आपने पैसे दिए डॉलर में, उन्होंने लिए रुपीज में वहां पे, अब जब वापस लौटा रहे हैं डॉलर की तो कीमत इतनी चढ़ गई, आपने उसको आज 100 डॉलर दिया था, जब उसने वापस दिया तो वो तो 90 हो गए थे। अब आप कहते हैं मुझे तो 100 ही चाहिए, वो कहता है कि मैंने तो इतने ही दिए, अब मैं क्या करूं अगर डॉलर बढ़ गया, रुपीज में तो मुझे इतने ही मिलेगा। तो ये चीजें तो पहले तय करनी चाहिए थी जिस वक्त कर्ज दिया जा रहा, तो ये चीजें सब लिखी जाए उस वक्त, किस करेंसी में वापस करोगे, कैसे करोगे, ठीक ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, अदल के साथ हर बात ठीक ठीक लिख ली जाए। अच्छा अब जबकि उस जमाने में देखिए इस तरह के कातिल तो नहीं होते थे, और ये भी नहीं होता था कि कोई मतलब ऐसी कोई प्रोफेशन हो इस चीज का, तो जो लिखने पढ़ने वाले थे, अब बहुत ज्यादा ये चांस था कि वो अब नखरा करने लगे या वो अब किसी को ना लिख के दें और कहें इसको अपने लिए मसला समझे या कुछ है। तो अल्लाह ताला ने अब आगे उनको इंस्ट्रक्शन दिया, ये वला या अबस इंस्ट्रक्शन किसको, कातिब को, कातिब को क्या कहा जा रहा है, वला या अब कातिबुन अन यक्तुबा मा अल्लामहुल्लाह, ना इनकार करे कातिब, कातिब तुम्हें भी लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। अब ये भी हो सकता है ना, जाहिर है उनकी डिमांड इतनी हो गई, अब लिखाने वाले पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके और वो जनाब हाथ ही नहीं आ रहे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम लिखने से इनकार ना करो। तो बाज दफा वो इसलिए भी इनकार करते थे कि हमें क्या जरूरत है कि हम इस मामले में पड़े, किसी की जिम्मेदारी लेना हमें क्या मसला पड़ रहा है, हम क्यों जिम्मेदारी, यही इंसान इसीलिए घबराता है ना, बाद में इन्होंने मेरे पीछे पड़ जाना, कहेंगे तुमने ये बात इस तरह से क्यों लिखी, और एक जिस पार्टी को नुकसान हो रहा होगा उसी से तो वैसे ही ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने कातिब को ये हुक्म दिया कि तुम लिखने से इनकार ना करो, क्यों, इसलिए कि अन यक्तुबा कमा अल्लामहुल्लाह, कि वो लिखे जैसे कि सिखाया उसको अल्लाह ने, अल्लाह ने तुम्हें लिखना पढ़ना सिखाया है, क्या पहले से तुम लिखना पढ़ना जानते थे, माँ के पेट से जब पैदा हुए थे तो क्या लिखे पढ़े आए थे, किसने सिखाया तुम्हें, सोचे ना इंसान को अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान कुराने पाक में कि अल्लाह ताला ने उसको कलम के जरिए लिखना सिखाया, अल्लाह मल इंसान बिल कलम, अल्लाह ताला ने कलम के जरिए उसको लिखना सिखाया, तो सिखाया किसने, अल्लाह ने, तो जिस अल्लाह ने लिखना सिखाया तो क्या तुम उसकी हुक्म के मुताबिक खल्के खुदा की इस किस्म के मामला तय नहीं करोगे, ये भी शुक्र है इस इल्म का कि अल्लाह ने तुम्हें ये इल्म दिया है, तो शुक्राना क्या होगा, इसका हक अदा क्या करना कैसे होगा कि अल्लाह की जो मखलूक है उसके काम आया जाए लिख के, समझ आई बात। अब बाज दफा ऐसे भी होता है कि सिर्फ इस चीज के लिए नहीं, बाज कभी आपकी मेड होती है या और लोग जो कि अनपढ़ होते हैं, आप लिखना पढ़ना जानते हैं, वो आपसे कोई खत लिखवाना चाहते हैं, कोई बात लिखवाना चाहते हैं, कोई हिसाब किताब लिखवाना चाहते हैं, आओ कहते मैंने तो लिखना नहीं, ये उस वक्त हमेशा ये याद रखा करें कि आज मुझे जो अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है कि आप पढ़ लिख सकते हैं, तो इसका शुक्र क्या है कि अल्लाह की मखलूक को मैं इनकार ना करूं, ये इसका शुक्र अदा करना, ये अल्लाह ने आपको तौफीक दी, तो इन हदीस में आता है कि ये भी सदका है कि किसी काम के करने वाले का हाथ बटा दो या किसी गिरे पड़े का काम कर दो, ये भी सदका है, तो तुम लिख दिया करो, ये भी तुम सदका कर रहे हो, ये भी नेकी है, और हदीस में ये भी है कि जो इल्म को जानबूझकर छुपाएगा कयामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी, क्या मुझे नहीं लिखना पड़ा वहां पर। तो ये भी जो लिखने पढ़ने वाले हैं उनको अपनी इस जो अल्लाह ताला ने स्किल दी है, सलाहियत दी है, इससे उन लोगों का काम करना चाहिए जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। और अल्लाह ताला को देखिए पता है ना, ये जो कातिब है वो घबराएगा, तो वो तो दिलों के अंदर के हाल जानता है, वो इसीलिए अल्लाह ताला ने फौरन ये इंस्ट्रक्शन दे दी तुमने इनकार नहीं करना, और वैसे ही लिखो जैसे अल्लाह ने सिखाया। और कैसे अल्लाह ने सिखाया? आदम के साथ। तो अपने कलम के साथ दूसरों को फायदा पहुंचा, फल यक तो बस चाहिए कि वो लिखे जैसे अल्लाह ने सिखाया वैसे लिखे। वल युम्लिल, अब कौन डिक्टेट करेगा? अब जो लिखने वाला है, मिसाल के तौर पे दो लोगों के दरमियान कर्ज का मामला हुआ, ए ने बी को कर दिया, अब लिखे कौन? वो तो आपने एक कातिब ले लिया, अब कातिब को लिखवाएगा कौन? कातिब को खुद थोड़ी पता है क्या लिखना है। अब आप उसको कुछ बताते हैं ना, कुछ डिक्टेट कराते हैं, आप मतलब लॉयर करते हैं तो उसको बताते हैं भाई मैं फलां चीज इतना लोन ले रहा हूँ, इतना है, ये है, ये सब चीज आप लिखवाएंगे उसको। तो यही चीज यहाँ पे बताएगी कि कौन उसको डिक्टेट कराएगा, कर्ज लेने वाला या देने वाला। अल्लाह का नाम यहाँ पे क्या करना है, वल युम्ली लिल्लदी अलैहिल हक, वो डिक्टेट कराएगा जिसपे हक है। हक का मतलब क्या? यानी उसने अदा करना है कर्ज, यानी मकरूज जिसने लोन लिया है वो डिक्टेट कराएगा। अब ये देखें यहाँ पे क्या होता है, आजकल बैंकों के मामले में उलट होता है, कौन लिखवाता है? बैंक लिखवाता है, देने वाला लिखवा रहा, जबकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो लेने वाला है ना वो लिखवाए। इसलिए कि देखें कर्ज लेने वाला जब खुद लिखवाएगा उसको तसल्ली रहेगी कि मेरा मामला क्या है, उसको याद रहेगा मैंने कितने का कर्ज लिया, मुझे कब वापस लौटाना, क्या लिखा जा रहा है। तो वो डिक्टेट करवाए जिसने कर्ज लेना है कि देना है, जिसने लेना है। वल यत्तकिल्लाह रब्बहु, और चाहिए कि डरे अल्लाह से जो रब है उसकी। तकवा तकवा तकवा, ये तकवा दीन की बुनियाद है। ऐसे लगता है कि पूरी सूरह बकरा का जो थीम है ना वो है ही तकवा, शुरू भी तकवा मुत्तकीन के जिक्र से और आखिर तक आप देखिए तकवा की बात। अल्लाह से डरो, लिखवाने वाला जो है ना वो अल्लाह के खौफ के साथ लिखवाए। जहां अदल की इंस्ट्रक्शन दी गई लिखने वाले को, तो जो डिक्टेट करा रहा है वो भी खुदा खौफी रखे। जब खुदा खौफी होगी तो वहां पे गलती कौन कर सकता है? एक डरा हुआ इंसान जो होता है उसके मामला दुरुस्त होते हैं, और जो बेखौफ होता है, नडर होता है, वो कहीं भी डंडी मार सकता है। तो कहीं भी जरा भी हेरा फेरी नहीं करनी, कहीं भी जरा भी लिखवाने में कमी बेशी नहीं करनी। ये ना हो कि बात जुबानी तो कुछ और तय हुई है और जब लिखवाने बैठे तो जरा सा हेर फेर इधर से उधर कर दिया, एक जीरो कम कर दिया। कर्ज लेने वाला तो यही कहेगा ना, कम देना पड़े मुझे वापस लीजिए। तो यहाँ कुछ ऐसी बात लिख दी कि माने ही उलट हो गए। नहीं, अल्लाह के डर के साथ लिखा, वला यबखस मिन्हु शैअन, और ना कमी करे उसमें से किसी चीज। जैसे मैंने कहा कि कर्ज लेने वाला जो है ना वो लिखवा रहा है ना, वो डिक्टेट करा रहा है, तो वो तो जाहिर है कमी चाहेगा कि मैंने 50,000 लिया है तो एक जीरो कम कर दूं, 5,000 बन गए। ठीक है, तो जरा सी भी कहीं डंडी नहीं मारनी, ये ना हो कि लूं ज्यादा और दूं कम। फइन काना, अच्छा आप आगे ना तीन सिनेरियोज दिए गए, तीन तीन सिनेरियोज उन लोगों के हैं जो कि खुद नहीं लिखवा सकते, उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब ये इतनी सुभान अल्लाह डिटेल में अल्लाह ताला ने सारी बात को कवर किया ना, इससे पता चलता है कि इसकी सीरियसनेस कितनी है। अब देखें, तीन तरह के लोग हैं जो लिखवाने की इस्तात नहीं रखते, वो कर्ज ले तो रहे हैं, पर इन कान लदी अलैहि हक हो, फिर अगर हो वो शख्स जिसके ऊपर हक है, याद रखें जब भी ये बात आएगी जिसके ऊपर हक है तो क्या मतलब है, यानी जिसने कर्ज लिया, अब हक है ना कि वो कर्ज वापस दे, तो कर्ज लेने वाला अगर कैसा है, सफीहन, सफी है, नंबर वन क्या है, छोटा सा नंबर वन ऊपर है, सफी है, बेवकूफ है, कम अकल है, अनवाइज है, कोई जाहिल है, औ दुईफन, या नंबर टू क्या है, कमजोर है। कमजोर कैसा हो सकता है, जैसे जिस्मानी तौर पे भी कमजोर हो सकता है, अकल में भी कमजोर हो सकता है, जैसे इंसान बहुत जयीफ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बात बात पे उसको जो है ना बातें भूल जाती हैं, जरा सी बात करते करते ही बात भूल जाती है, औ या ला नहीं यस्ततियु, वो इस्तात रखता, अं युमिल्ला कि वो इमला कराए, कि वो डिक्टेट कराए। अब ये तीन सिनेरियोज हो गए, पहला क्या है, या तो वो खुद यानी कर्ज लेने वाला जो है ना मिसाल के तौर पे कम अकल है, इतनी उसकी समझ नहीं है, हो सकता है वो कोई बच्चा हो, नाबालिग बच्चा हो, अब वो ये कैसे हो सकता है, हाँ सोचेंगे बच्चा कौन कर्ज लेता है। देखें कुरान जो है ना हर जमाने हर तरह के माशरती तबके, जो भी लेवल्स हैं माशरे में सोसाइटी में होते, उनके लिए हम जब कुरान को पढ़ते हैं तो शायद हम सोचते हैं कि ये हमारे ही जैसे जो जिस माहौल में हम रहते हैं शायद सारी दुनिया इसी में चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ, इसका नया कोई बच्चा है, छोटा लड़का, उसका बाप फौत हो जाता है, अब उसके कफन दफन के लिए उनके पास पैसे नहीं, अब वो इधर उधर भी देखता है, रिश्तेदार भी सारे इतने गरीब हैं कि उनके तो खुद खाना पीना नहीं चलता, उनकी तो खुद गुजर बसर नहीं होती सही से, तो खुद दो वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करते, और मोहल्ला भी ऐसा है जिसमें सारे ही लोग गरीब हैं, अब कौन देगा इसको, इसके बाप का कफन दफन है, अब क्या है कर्ज लेना पड़ेगा। अब जो रिश्तेदार वगैरह वो है वो कर्ज लेने के मामले में इस बच्चे की इतनी तो हेल्प कर सकते हैं कि लिखवा दें उसके लिए, बाकी वो अपने ऊपर नाम पे अपने नहीं कर्ज लेंगे, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, ये बड़ा होगा खुद ही पूरा करता रहे, हम अपने नाम पे क्यों लेकर, ठीक है। तो देखिए ना सबके हालात एक जैसे तो नहीं है ना, कोई एक मैंने आपको सिनेरियो दिया था, तो अब क्या होता है कि वो इस बच्चे के नाम पे कर्ज लेंगे, लेकिन अब बच्चा कैसे डिक्टेट कराए, तो वो सफी हो गया ना, वो तो कम अकल है, उसको तो इतनी समझ नहीं है, तो उसके लिए अब क्या क्या उसको वो क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में, ये यहाँ बताया गया। यहाँ बूढ़ा हो, अब बूढ़े भी कई इतने बूढ़े हैं, अब कर्ज की जरूरत पड़ गई या कोई ऐसा मामला हो गया, लेकिन अपनी बात भी उनको याद नहीं रहती, तो वो लिखवाएं क्या सही से, वो तो सही से नहीं लिखवा सकते, तो उनका क्या किया जाए, या वो जो इस्तात ही नहीं रखता कि डिक्टेट कराए, वो कैसे हो सकता है कि कैपेसिटी ही नहीं उसके अंदर, इतनी ताकत ही नहीं, मिसाल के तौर पे कोई गूंगा है तो ठीक है ना, वो या कोई ऐसा है जिसको कोई लैंग्वेज ही नहीं वो बोलनी आती उस कंट्री की, अब मतलब यहाँ पे किसी को इंग्लिश ही नहीं आती, वो किस तरह से बताएगा कि भाई ये लिखो, तो ये तीन चीजें हैं ना जो रुकावट बन सकती हैं डिक्टेट कराने में। तो अब क्या होगा, हुआ वो फल युम लियु, बस चाहिए कि इमला कराए वलीयुहु, वली उसका बिल अदल, साथ अदल के, अब इनका जो मसलन बच्चा है तो उसका कोई गार्डियन होगा, कोई कोई होगा, अपने नाम पे नहीं वो कर्ज लेगा लेकिन वो डिक्टेट कराएगा, ठीक है, डिक्टेट कराएगा अदल के साथ, इसी तरह कोई जयीफ है तो हो सकता है उसको कोई वकील हो, इसी तरह कोई कोई इस्तात नहीं रखता इमला कराने की, तो उसका कोई हो सकता है इंटरप्रेटर हो। तो यहाँ वली में एक थर्ड पार्टी आ गई ना, कि जो आके इसकी जगह पे डिक्टेट कराएगी, लेकिन वो पार्टी भी अदल के साथ बात करे। ये नहीं है कि किसी के ऊपर तर्स खा के, ये नहीं, ये तो हमारा एक यतीम बच्चा, ये तर्स खा के काम लिखवा दिया उसके लिए। यहाँ जो कर्ज देने वाली पार्टी है वो इतनी स्ट्रोंग है, तो उनको खुश करने के लिए कर्ज ज्यादा लिखवा दी। नहीं, वली भी इंसाफ से लिखवाए। इसको ये भी जायज नहीं है कि कोई भी हेरा फेरी इधर उधर करे। आप कुछ बात नोट कर रहे हैं? दूसरी दफा अदल की बात आई है। कितना ये दीन इंसाफ पसंद है कि कभी भी किसी के साथ कोई ज्यादती ना होने पाए, ना कर्ज देने वाले को कभी कोई नुकसान उठाना पड़े, ना लेने वाले को। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा रब क्या पसंद फरमाते हैं? अदल, इंसाफ। अब ये देखें, जो रब इंसानों को इंसानों के साथ ज्यादती करने को बर्दाश्त नहीं करता, तो सोचें क्या कयामत के दिन वो किसी के साथ ज्यादती होने देगा? खुद सोचें, वहां भी एक एक बंदे को इंसाफ दिलाएगा वो। किसी ने किसी का हक मारा होगा तो उसको उसका हक दिलाए। एक पीलू की टहनी के बराबर भी, छोटी सी ब्रांच होती है, जिस जैसे समझ ले मिसवाक के बराबर, इतना भी किसी ने किसी का हक मारा होगा तो उसको उसका हक देना पड़ेगा। इवन किसी जहन्नमी के ऊपर किसी जन्नती का कोई हक होगा, तो वो बंदा जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक इस जन्नती का हक ना दे दे। इसी तरह किसी जन्नती के ऊपर अगर हक है किसी जहन्नमी का, तो ये जन्नती भी जन्नत में एंटर नहीं हो सकता, चाहे अभी कितना ही नेक है, मगर इसने इसका अगर जहन्नमी का भी हक देना है। ये नहीं कि ये तो जहन्नम में जा ही रहा है तो फिर क्या हो गया, तो उसने तो जाना ही है ना, ये भी जन्नत में जा ही रहा है। नहीं, यू हैव टू पे। यहाँ पे पेमेंट होगी, फिर उसके बाद तुम जन्नत में जाओगे और वो जहन्नम में जाओगे। अब पेमेंट फिर आपको पता है ना, किन कॉइन्स में होगी वहां पे। वहां पे पेमेंट तो नेकियों और बदियों के उसमें ट्रांजेक्शन होंगी, वहां पे तो कोई डॉलर और दीनार और दिरहम तो होंगे नहीं। तो जिसका हक होगा अल्लाह ताला उसका हक उसको दिलाएगा। कोई यहाँ पे परेशान ना हो कि मेरा हक लेके कोई फलां चला गया है, फलाने ने मेरा हक मार लिया, हमने भी नहीं हक देने क्योंकि उसने भी नहीं हमारा हक दिया। अल्लाह ने सब के हक दिला देने। अदल 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 की बात है। और दूसरी बात इसमें नोट कर रही है ये इस चीज को, कि ऐसे रब के बारे में क्या आप सोच सकते हैं कि वो दुनिया में हमें कोई ऐसे हुक्म देगा जो हमारे साथ अदल वाले नहीं होंगे, जो हमारे साथ फेयर नहीं होंगे? जो रब फेयरिटी पे इतना जोर देता है कि एक इंसान भी दूसरे इंसान के साथ कहीं कोई नाइंसाफी ना कर दे, क्या वो हमारे लिए ऐसे हुक्म देगा जो हमारे साथ नाइंसाफी हो, जिसमें हम कहें दैट्स नॉट फेयर? लेकिन हम कहते हैं, क्या आप अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे हुक्म दे? वो तो इतना सेंसिटिव है इंसानों के आपस के मामलात में कि जरा सी भी, देखो थोड़ी सी भी, वला यबखस मिनहु शैयन, कमी ना करना किसी चीज की भी। 1005 रुपए लिए तो 1005 ही लिखना, ये ना हो गए 5 रुपए की तो क्या बात है, कोई बात नहीं, 5 ही तो रुपए हैं, 1000 लिख दो। नहीं, 5 भी लिखो, 1 50 सेंट है तो वो भी लिखो, जरा सी भी नहीं कमी कर सकते। जिसने ये फरमाया कि जर्रे के बराबर नेकी भी होगी तो वो तुल जाएगी। जर्रा कौन, क्या होता है पता है आपको? डेफिनेशन जर्रे मालूम है आपको? जर्रा इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहते थे ना, आप कहते हैं एटम के भी अंदर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो अब तो जर्रा कितनी छोटी चीज है, वो इतनी छोटी चीज को भी उस दिन तोड़ लेगा। वो तो ऐसा इंसाफ करने वाला, और उससे कोई सोचता है कि वो ज्यादती कर जाए, वो ऐसे हुक्म दे दे। वो तो इंसानों को भी कहता है कि तुम भी अदल करो एक दूसरे के साथ, इंसाफ से तो चलो एक दूसरे के साथ। कभी भी दिल में ये गुमान भी ना आने पाए कि कहीं कोई हुक्म ऐसा आ गया जिसने हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफी है, हम बेचारी औरतें हमारे साथ बड़ा जुल्म है। नहीं, वो जात जुल्म से पाक है, उसने जुल्म को अपने पर हराम किया है,